RadioCube.com।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773। ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900।
چاندنی
بینکویٹ ہال،
انٹیلیجنٹ چوائس locations, sound system, innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience, corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam, Chandni Banquet Hall. Aaj hi call kijiye, 437-218-8734, chandnihalls.ca.
हेवनली डिजर्ट्स, अपस्केल डिजर्ट्स कैफे, जहां आप इंजॉय कर सकते हैं इनोवेटिव डिजर्ट्स जैसे कि क्रॉफल, मिल्क केक, चीज केक, क्रेप्स, सैंडी जार्स, ब्रिटिश क्लासिक्स, हैंड क्राफ्टेड ड्रिंक्स, मोजीटोस, मिल्कशेक एंड स्मूदीज। मजेदार डिजर्ट्स की बहुत सारी वैरायटी और वो भी पूरी फैमिली के लिए। Heavenly Desserts, 5840 Mavis Road, Unit Number 2 in Mississauga. Call 905-203-0086, 905-203-0086.
यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही प्लानिंग फॉर वेकेशन।
हवाई टिकट की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं।
अरे मेरे लिए कोई डील तो देखो।
और मशीन के बजाय रिप्रेजेंटेटिव से बात करें।
है ना एयरविंग ट्रेवल, होलसेल रेट, पाकिस्तान, इंडिया और मिडल ईस्ट, एवरीवेयर वेयर यू वांट टू ट्रेवल।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
पर्सनलाइज्ड ट्रेवल सॉल्यूशंस, अफोर्डेबल, इजी एंड डिस्काउंटेड एयरफेयर्स।
Airwing Travel and Tours, 905-272-2300,
905-272-2300।
वेलकम बैक तमाम सामाईन जो हमें 770 AM डायल पर सुन रहे हैं और ई आवाज टीवी पर देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद। जनाब बिल्कुल 6 बज चुके हैं हमारी घड़ियों में, आपकी घड़ियों में भी 6 बज गए होंगे। और 6 बजे पता आपको क्या होता है? नहीं पता? वैसे तो मुझे भी नहीं पता। न्यूज होती है। ओहो हो, अंडे पता नहीं क्या क्या खींच के दो चार टमाटर आगे लगाए यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जहाज शुरू कर दिया आपने जनाब, कोई बात नहीं, न्यूज हो रही है तो न्यूज ही होगी। आपको आपने फील नहीं किया एक माहौल गर्म, गर्मी का माहौल वैसे हीट हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे टोरंटो में है नहीं। अच्छा भाई भुगत रहे, बहुत देर से भुगत रहे मुझको। अच्छा भाई ऐसा करते हैं, शाजिया मलिक साहिबा को जो है वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आपको पता है न्यूज जो है वो गर्मा गर्म लेके आ गई है। अस्सलामु अलैकुम शाजिया मलिक साहिबा, कैसी हैं?
बिल्कुल ठीक है। आज तो मुझे लग रहा है एक जैसे हम कपड़े पहन के घर से निकले हैं।
वाह भाई वाह,
ये तो एक जैसे कपड़े,
ये साजिश है कोई?
ये साजिश की
है। तो आपके पास पैगेसेस आ गया या मेरे पास आ गया?
नहीं मेरे पास तो बड़े अरसे से, मैंने तुम्हारे पे नजर रखी हुई है।
ये तो व्हाट्सएप ही ब्लॉक है
इसीलिए बार बार सी।
अब समझ आया,
समझ आई है कि मैंने पेगासस तुम्हारे फोन पे डाला हुआ ताकि तुम्हारी सारी फुर्तियां मुझे पता चलते जाएं कि तुम क्या कर रहे हो, किस दिन क्या हो रहा है, किधर जा रहे हो, कहां से आ रहे हो। वो बेचारी भोली है महनाज जिसको पता नहीं है, मुझे सारा कुछ तुम्हारा पता।
वैसे ही भोली चार पांच होना तो बस बोलूंगा जो है ना,
एक एसोसिएशन बनाएंगे,
एक एसोसिएशन बना लेंगे हम भी,
भोला एसोसिएशन।
भोला यार नाम कैसा है? भोला एसोसिएशन,
भोला एसोसिएशन बिल्कुल।
और वो क्या कहते हैं, वो चैरिटी वाला स्टेटस ले लेंगे।
हाँ हाँ बिल्कुल, दबादब पैसे कमाएंगे
और जरूरत ही नहीं है
बिल्कुल। काम शाम तुम्हें काम नहीं करना है, छुट्टी करके घर में बैठ जाना,
वो भोले बनके बैठे रहो।
हाँ तुम भी और बेगम भी दोनों भोले बनके।
कैसा टेस्ट लग रहा हूँ, कोई आए क्या 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 कर रहे हो? भोले क्या क्या नाम है? भोला
कर क्या रहे हो? भोले बने
बैठे कमाते कहाँ से? भोले से।
वाजी वाज, क्या
ये आइडिया वैसे क्रिएटिव,
देख कितना जबरदस्त है।
मैं तभी कहता हूँ अगर मेरा कोई खैर ख्वाह है ना तो ये जीटीए में
मैं हूँ, मैं हूँ आमिर, मुझे बहुत ख्याल है तुम्हारा,
यकीन करें
ऑनेस्टली।
मैं कहता हूँ कि मैं जितने भी नफली अदा कर लूँ ना
कम है,
तो वो कम है।
तुम बड़े खुशनसीब हो जो मेरे साथ काम कर रहे हो, देखो
मुझे अब पता चला,
अब पता चला ना
पता नहीं कहाँ था ख्वाबों में कहाँ घूम रहा था।
अब ये देखो आज तुम्हारा रंग मुझे लग रहा है कितना पीला हुआ है, क्योंकि आज मैं टेबल पे नहीं बैठी हुई थी ना, तुम्हारे हिस्से का सारा खाना दूसरे खा गए हैं। अब ये देखो ये तुम्हें किसी ने ये बात की तुम्हारा रंग पीला हो गया, देख लो
कोई भी नहीं बताता, ये सब
कोई नहीं बताता है ना, देखा
पूरे टोरंटो में कोई नहीं बताएगा।
ना 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 ना, ये तो सिर्फ मुझे तुम्हारा ख्याल है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ आमिर, तुम्हारे साथ ये कुछ हो रहा है, ये चलाकियां हो रही हैं, तुम्हारा जो है ना तुम्हारे मासूम आदमी पे बहुत जो है ना जुल्म हो रहा है, तो ये सिर्फ मैं बताती हूँ।
बता रहा हूँ कि आप मेरी बहुत ही मुखलिस जो है वो एक दोस्त, एक साथी जो है वो मेरा कलीग वो है। मैं यकीन करें कि मुझे इस वक्त मेरे पास अल्फाज नहीं मिल रहे, मैं आपको शुक्रिया अदा कैसे करूं?
मुझे लग रहा है तुम्हारे मुंह से लग रहा है कि तुम्हारे पास वर्ड्स आ ही नहीं रहे हैं, तो बस ये याद
खत्म हो गए ना। बेसिकली तीन बजे से रेडियो कर रहा हूँ तो ये तो तीन साल के जो मेरे अल्फाज थे खत्म हो गए,
सब खत्म हो गए।
तो अब वो तारीफ में आपकी वो कहते हो ना कि अब आपकी तारीफ तो वो खुदा ही करे।
लेकिन आमिर तुम देखो ना अब तुमने कुछ सीखा भी नहीं है, मैंने तुम्हें बड़ी दफा ये सुनाया है
फिर मिस्टेक
मैट्रिक, यहाँ फिर से मिस्टेक होगी है। मैट्रिक के एग्जाम में उन्होंने कहा जी कि आप जो है नेबर्स के साथ सलूक के ऊपर आप एक ऐसे लिखे, तो उन्होंने सारा क्रिकेट का हाल लिख दिया तो तुमने भी ऐसे ही करना था, तुमने सारा जो क्रिकेट का हाल था ना जो तुम खिड़की से बस देखते थे अपने घर से, वो तुमने बता देना था भी यहाँ पे तुम्हारे तीन तीन घंटे बड़े आराम से गुजरते है ना।
मैं तो सारी जिंदगी क्रिकेट कितना
कितना खेला है,
देखा था कोई नहीं। ये यही तो मैं आपको वैल्यू देता हूँ, ये बातें जो है ना ये
कोई नहीं
दोस्त बता सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो ना अब वो आर्टिकल जिस वक्त आया मुझे मेरे पास आया कि जी आप बताएं नेबर्स का आपने ख्याल कैसे, मैंने कहा हाँ जी मेरे नेबर में मेरी सहेली फरजाना और उसकी फैमिली रहती है, बड़े अच्छे लोग हैं, उसकी मम्मा काम नहीं करती, उसके बाबा काम करते हैं, वो रोज मेरे साथ स्कूल जाती है और रोज हम क्रिकेट खेलते हैं, फिर उसके बाद क्रिकेट की स्टोरी शुरू हो जाती है, तो तुमको ये करना चाहिए था। ओहो
अब मैंने इसके नोट्स बना लिए,
हाँ नोट्स बनाओ हमें
और मैं अगली बार जो है इसको बिल्कुल वो कहते हैं पॉइंट टू बी नोटेड में,
हाँ बिल्कुल ऐसे
तो वो अगली बार ऐसे ही करेंगे।
हाँ
तो
ठीक है, और फिर तुम्हारे बड़े आराम से गुजरेंगे, जितने मोहल्ले के लपंटे लफंटर सबको सुनाना कि तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मुझे बॉल की बजाय पत्थर मारा, तुमने ये किया, उसकी खिड़की तोड़ी, सारे राज भी खोल देना
सब बता
कि तुम्हारे बॉलों से इस बंदे के घर की खिड़कियां टूटी और बल्ब टूटा और स्ट्रीट लाइट्स टूटी। हाँ सारा
स्टोरीज,
यस यस यस,
अगली बार मैं यही करूंगा,
यही करना,
टेंशन ही ना ले। टेंशन
ठीक है ओके चलो जी ठीक है घर में हम अपनी शुरू करते हैं. दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय सुल्तान भाई. सुल्तान भाई आपको पता ही है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज पे होते हैं, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट पे होते हैं, तो आप उनके पास जाएं. बहुत ही प्यारे आपको शैम्पेन कलर के और जो अर्फाबाजी की पसंद के हैं वो एमरल कलर के आपको मिल सकते हैं वहां पे अप्लायंसेज. इनका नंबर है 905-450-2828. इसके अलावा जनाब एक बहुत ही जबरदस्त जॉइंट खुल गया है, यानी कि ड्रग्स का जॉइंट नहीं, जॉइंट हेवनली डिजर्ट्स का है जी. वहां पे आप जाएं और आपको वैसे वो जो उनके पास जो डिजर्ट्स है ना वो आप जैसे जैसे आपके अंदर जाएंगे ना आपको मजा वही वाला आएगा, आप भी उड़ता पंजाब बनेंगे. इतने कोई जबरदस्त ये हैं हेवनली डिजर्ट्स. तो ये हैं, दे आर लोकेटेड एट 5840 मेविस रोड और इनका यूनिट का नंबर है 2 मिसेस सागा के अंदर है और इनका नंबर है 9052030086. और जनाब चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल जनाब इनके पास भी बड़ी जबरदस्त जो हैं वो फैसिलिटी आप हैं क्योंकि 1400 प्लस ताई बंदा आपको पता ही है जो मैं आमिर और जो है वो माजिद भाई आप हमें बुला सकते हैं अगर आपको आपका कॉरपोरेट या कि आपका फैमिली इधर इवेंट करना है. और बहुत ही आइडली लोकेटेड है ये 2935 ड्री रोड मिसिसागा में. अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 6479653823. और वाकई यामिर तुम ठीक कह रहे थे, बड़े प्रोटेस्टिंग चल रही हैं मुल्क के अंदर.
मामला गरम है,
बहुत गरम किया भाई. और पाकिस्तान से इम्प्रेस हो गए हैं सब लोग, मैं तुम्हें बता रही
हूँ
ना. हाँ देखो जरा,
आज नहीं तो कल लोग पहचान जाएंगे.
हाँ पहचान जाएंगे मेरी पहचान है जी, जान जाएंगे हम कौन है. ठीक है जी. अच्छा जनाब आज जो आप खबर सुना रहे थे टूडो साहब ने भी उसका अनाउंसमेंट आज किया है कि जी मेजर वैक्सीन प्रोडक्शन प्लांट जो है ट्रांटो के अंदर अब लाया जा रहा है और ये डोमेस्टिक बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इसको बढ़ावा देगा. आपको पता ही है कि कोविड 19 के बीच में इनको पता चला था पहली दफा कि भाई अगर इमरजेंसी ऐसे कोई पैंडेमिक की आ जाती है तो हमारे पास बिल्कुल भी कोई फैसिलिटी नहीं है कि हम जल्दी से वैक्सीन बुला सकें और हमको रिलाई करना पड़ेगा इम्पोर्ट्स के ऊपर. तो ये आज जो नई फैसिलिटी है ये खोलने वाले हैं सेनोफी वाले एंड दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट इन कैनेडा. और ये कैनेडा की डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसको ना सिर्फ पीडियाट्रिक बल्कि एडल्ट वैक्सीन जो हैं उनको भी बहुत ज्यादा बढ़ाएगी. इसके अंदर वूफिंग कॉफ है और डिफ्थेरिया है, टेटनस है और भी बहुत सारे जो वैक्सीन हैं जैसे कि फ्लू शॉट्स और ये कुछ भी ये लोग बनाएंगे. सेनोफी जो है उसको फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे 415 मिलियन डॉलर्स और जो ऑन्टेरियो की गवर्नमेंट है वो 55 मिलियन डॉलर्स देगी टू बिल्ड फ्लू शॉट्स एंड पेंडेमिक प्रिपेयरनेस प्लांट जो है उसको एज अ पेंडेमिक प्रिपेयरनेस प्लांट जो है उसको यूज करेंगे. वो कहते हैं जी कि ये जो है कंप्लीट हो जाएगा बाय 2026 और नहीं ये कंप्लीट होएगा 2027 में सॉरी ये 2027 में कंप्लीट होएगा और बिटवीन मई 2020 से अप्रैल 2022 के बीच में जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसने प्रॉमिस किया था कि हम एटलीस्ट 1.3 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो ये जो नए बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनके सेटअप्स के ऊपर लगाएंगे और 12 न्यू बायो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हम खोलेंगे जिसके के अंदर वैक्सीन और एंटीबॉडी के ट्रीटमेंट्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं. तो वही अपना प्रॉमिस जो था उसके ऊपर आज ये नया जो है एक खुला है. इसके बाद और भी खुलेंगे. ऑन्टारियो गवर्नमेंट जो है जी उसने अब कहा है कि लिटरेसी जो है उसको हम बेहतर करना चाहते हैं. इस सिलसिले में एजुकेशन मिनिस्टर स्टीफन लेचर साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि ग्रेटर एक्सपोजर ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए हम जो है एक पूरा ओवरऑल कर रहे हैं हाई स्कूल का प्रोग्राम ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स. और ये आज बात कर रहे थे टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज पे और उन्होंने कहा जी कि बहुत क्रिटिकल है बच्चों के लिए कि उनको पता होए कि उनको अपना बजट कैसे मैनेज करना है और अपने रिटायरमेंट तक कितने पैसे जो हैं वो बचाने हैं क्योंकि हमें पता चला है बहुत सारे पेरेंट्स से कि बच्चों को पैसे बचाने आते ही नहीं है, उनके जो ये फाइनेंशियल स्किल्स हैं ये उनके पास बिल्कुल नहीं है. तो हम उनको बैक टू बेसिक्स बिल्कुल क्लासरूम में लेके जा रहे हैं और हम उनको सिखाएंगे कि हाउस होल्ड बजट आपने कैसे मैनेज करना है, सेव कैसे करना है घर के ऊपर और फिर अपने घर के लिए और अपने जो एसेट्स हैं उनके लिए पैसे कैसे बचाने हैं. ये सारे का सारा प्रोग्राम जो है इसको जो एक्सपर्ट्स हैं एट टीवीओ इन कोलैबोरेशन विद टीएफओ एंड ईक्यूएओ मिलकर इसको डेवलप करेंगे. और वो कहते हैं जी कि इसमें जरूरी है कि अगर आपको हाई स्कूल से अगर पास आउट करना है तो 70% आपके पास मार्क होना चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर और जो लोग फेल कर जाएंगे नाइन्थ ग्रेड में, फिर टेंथ ग्रेड में के मैथ्स कोर्स में, फिर से उनको जो है एक और चांस दिया जाएगा। ये प्रोग्राम जो है अभी जो सितंबर में जो स्कूल ईयर शुरू होने वाला है उसमें 2024 में ग्रेड 9 से शुरू करेंगे, और इसमें वो कहते हैं जी कि ग्रेड 9 और 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टेक्निकल एजुकेशन क्रेडिट जो है वो लेने की जरूरत है अपना डिप्लोमा लेने के लिए। तो ये काफी जो है चेंजेस आ रही हैं। आपको पता ही है कि EQA को के स्कोर्स कुछ अच्छे नहीं आ रहे थे और कहा जा रहा था कि मैथ्स तो के ऊपर बिल्कुल जोर नहीं है और बच्चों को मैथ्स नहीं आती, वैसे तो अंग्रेजी भी नहीं आती प्रॉपरली लेकिन मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, तो उस वजह से ये फिर अब ऑन्टेरियो गवर्नमेंट सारा ओवरऑल कर रहा है। NDP जो है जी उन्होंने कहा है गवर्नमेंट को, लिबरल गवर्नमेंट को, कि आपका ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म का लेजिस्लेशन है इसको आप जो है स्क्रेप ना करें, और जिस डेट के ऊपर आप लाना चाहते हैं अपना जो इलेक्शंस है उसी पर करें। आपको पता ही है कि ट्रूडो साहब और जगमीत सिंह साहब के साथ बहुत सारी बातें जैसे कि फार्मा केयर और उसके ऊपर होती हैं, तो आज उसी सिलसिले की जो बात है इन दोनों पार्टीज के बीच में फिर से भी हुई है। NDP की जो क्रिटिक है लीजा मरी बैरन, उन्होंने कहा जी कि आप जो है ये कुछ MPs अपने फाइनेंशियल गेन के लिए आपको ये मशवरा दे रहे हैं, और ये जो है बिल C-65 इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन एक्ट इसके अंदर कुछ लॉज को चेंज करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से जो बात कर रही हूं तो वो कह रहे हैं कि आप ये ना करें क्योंकि लोगों के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब ये बुरा असर क्या पड़ेगा बुरा, और लिबरल्स जो है करना क्या चाहते हैं, लिबरल्स ये करना चाहते हैं कि जो 2025 के जो इलेक्शंस हैं उनको अक्टूबर 20th पे करने के बजाय फॉलोइंग मंडे जो है अक्टूबर 27th उस पे करना चाहते हैं, और उसका रीजन इन्होंने ये दिया जी कि हम इसलिए करना चाहते हैं कि दिवाली आ रही है उस वक्त, और हम चाहते हैं कि दिवाली में सब लोग बिजी होंगे तो वोट नहीं कर सकेंगे, तो फिर दिवाली के बाद जो है ये वोट करें। लेकिन असल वजह ये नहीं है, असल वजह यह है कि जो MP 6 ईयर्स पूरे कर लेते हैं उनको फिर बड़ी ठीक ठाक पेंशन मिलती है, और ये पेंशन होती है इन द रेंज ऑफ 32,000 to 49,000। 80 MPs जो हैं वो ऐसे हैं जो कि अक्टूबर 21st 2019 को सिलेक्ट हुए थे, और अगर अक्टूबर 27th को 2025 में होते हैं इलेक्शंस तो इनके 6 साल पूरे हो जाएंगे और इनको ये पेंशन जो हैं वो मिलेंगी। 80 जो MPs हैं अगर उन्होंने अपनी सीट लूज कर दी तो फिर उनको ये पेंशन नहीं मिलेगी अगर 20th अक्टूबर को इलेक्शंस हुए। इसमें 32 जो हैं कंजर्वेटिव पार्टी के MPs हैं, 22 लिबरल पार्टी के हैं, 19 ब्लॉक क्यूबेकवा, 6 NDP के, और उसके बाद जो जगमीत सिंह साहब जो हैं वो भी इसी में शामिल हैं क्योंकि उन्होंने भी अपनी सिक्योर की थी सीट 2000 के फेडरल बाय इलेक्शंस में। तो ये जनाब चीजें हैं, तो अंदर की स्टोरी ये है कि इनको चाहिए हैं लंबी पेंशनें, जिसके के ऊपर NDP कह रहा है कि लोगों के ऊपर बहुत बोझ आ जाएगा तो आप ये ना करें। टोरंटो पुलिस ने आज कहा है जी कि हेट क्राइम्स यूनिट जो है उनका, उसने पता लगाया है एक MP के ऑफिस के बाहर वैंडलिज्म की गई है। ये जो MP हैं ये डेवन पोर्ट से लिबरल MP हैं जूली जरोविक्स, और ये ब्लूर स्ट्रीट वेस्ट के अंदर इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफिस था जिसको के रेड पेंट किया गया था। इनकी विंडोज के ऊपर जो था वो लिखा गया था कि जो है वो ये बहुत सारी चीजों के बारे में कि जैसे ये दिस इज बर्निंग, और फिर आर्म्स एम्बार्गो नाउ, और फिर जूली एंड कैनेडा इजराइल आर्म्स ट्रेड, और इस तरह की बहुत सारी चीजें, एंड रफा इज बर्निंग, और बेशुमार चीजें जो थे इनके ऑफिस के बाहर जो है वो लिख कर गए थे। इससे पहले भी इनके ऑफिस के बाहर जो है इस तरह की कोई कार्रवाई जो थी करने की कोशिश की गई थी। पुलिस जो है उसका कहना है कि हम जो है जाहिर है कि अब सस्पेक्ट्स को ढूंढ रहे हैं। इनका जो MP साहब हैं जूली, उनका कहना है कि ये लोग जो आए थे ये ब्लैक इन्होंने कपड़े पहने हुए थे, और इन्होंने ये लिख कर गए हैं रफाज बर्निंग टोरंटो विल बर्न टू। ये जो है जूली साहिबा, शी वॉज फर्स्ट इलेक्टेड फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 2015। शी इज द चेयर ऑफ कैनेडा नेटो पार्लियामेंट्री एसोसिएशन एंड शी हैज सर्व्ड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स पार्लियामेंट्री फाइनेंस कमिटी। तो वो कहती हैं जी कि ये जो हेट स्पीच जो है मुझे नहीं लग रही, और लेकिन फिर भी ये बड़ी खतरे की बात है अगर लोग जो है MP के ऑफिस तक पहुंच के भी इस तरह की हरकत कोई करेंगे। एसोसिएटेड प्रेस की आज न्यूज है जी, और इसके मुताबिक एक जॉइंट ऑपरेशन किया है जो यूरोपियन यूनियन का जस्टिस डिपार्टमेंट है यूरोजस्ट और उसने एक मैसिव जो है एक स्कैम्स का ये जो रैंसम वेयर का जो स्कैम फैलाने वाला नेटवर्क है उसको इन्होंने पकड़ा है, जो कि इन्फेक्ट करते थे ईमेल्स को। ये एक इंटरनेशनल ऑपरेशन ही आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर शामिल थे जर्मनी, नेदरलैंड्स, फ्रांस, डेनमार्क, यूके, यूएस और यूक्रेन। और ये क्या करते थे कि यूरोपियन यूनियन के डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स थे या इंस्टीट्यूशन थे उनके अंदर ये जो थे क्रिमिनल तरीके से भेजते थे, रैंसम वायर भेजते थे। लोग जैसे ही अपनी उठाते थे ईमेल्स या के जैसे ही अपने कंप्यूटर्स खोलते थे वो सारा का सारा उनका करप्ट हो जाता था और उसका फिर जो डाटा था इनके पास चला जाता था। ये जो सारी पुलिस ने कार्रवाई की और यूरोजस्ट वालों ने की है अलॉन्ग विद ये बाकी की पुलिस एजेंसीज जो इन कंट्रीज में, उसमें इन्होंने शट डाउन किए हैं 100 सर्वर्स और सीज किए हैं तकरीबन 2000 इंटरनेट डोमेन्स। इसका नाम इन्होंने दिया था एंड गेम और इसके अंदर ये सारे कंट्रीज जो थे वो शामिल थे। इसके अंदर 3 सस्पेक्ट्स जो हैं यूक्रेन में और 1 आर्मेनिया में पकड़ा गया है। इसके अलावा सर्च ऑपरेशंस यूके में और पोर्चुगल, नेदरलैंड्स और जगहों के ऊपर जो हैं वो जारी हैं। ये कहते हैं जी कि ये 2021 में ये सबसे पहले हमने टेक डाउन किया था बॉट नेट जिसको के एमोटेट कहते थे और इसने टारगेट किया था आइस्ड आईडी, पिकअप बॉट, स्मोकर लोडर, बम्बल बी, टिकर बॉट, इन सबको। तो उसके लिए बड़े अरसे से हम इनके पीछे लगे हुए थे और जो है ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये कौन जो है स्पैम या के रैंसम वायर जो है वो भेज रहा है। जर्मन अथॉरिटीज ने सिलसिले में कहा जी कि उन्होंने एक बहुत बड़े क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का भी पता चलाया है जो कि ये स्प्रेड करते हैं ये ट्रिक बॉट मैलवायर। तो अभी तक हमें पता नहीं चला है लेकिन उसके पीछे भी पुलिस जो है और इनकी एजेंसीज जो है वो लगी हुई हैं। तो ये आज उनकी बहुत बड़ी इंटरनेशनल सक्सेस जो है वो मानी जा रही है। रॉयटर्स की ये खबर है जी और इसके मुताबिक स्लोवेक प्राइम मिनिस्टर जो है रॉबर्ट गोलोब, उन्होंने भी आज कहा है कि हम पैलेस्टीनियन स्टेट जो है उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं, वी आर रिकग्नाइजिंग एन इंडिपेंडेंट सॉवरन पैलेस्टीनियन स्टेट। और ये प्रपोजल जो है अब उन्होंने पार्लियामेंट को दे दिया है अप्रूवल के लिए। आपको बताइए कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने भी अभी पैलेस्टाइन को इंडिपेंडेंट स्टेट रिकग्नाइज किया था और जो स्लोवेक प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो कह रहे हैं कि जी हम चाहते हैं कि यहां पे मामला जो है मिडिल ईस्ट के अंदर सही हो। बेसिकली तो ये सारे जो कंट्रीज कर रहे हैं ये प्रेशराइज कर रहे हैं इसराइल को कि वो अपना कॉन्फ्लिक्ट जो है गाजा के अंदर कम करे। लेकिन यूरोप के अंदर काफी चेंज देखी जा रही है। आज फ्रेंच एक लॉ मेकर जो थे LFI से सेबास्टियन डोलू, उनको सैंक्शन किया गया है क्योंकि उन्होंने पैलेस्टीनियन फ्लैग जो था वो पार्लियामेंट में दिखाया था और उसके ऊपर उनको कहा गया था कि जी आप निकल जाओ। उसको सस्पेंड भी किया है और 15 डेज के लिए और उनकी जो सैलरी भी है 2 मंथ्स के लिए उनको हाफ मिलेगी। लेकिन डेलोगू साहब का कहना है कि आई वांट टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। इसके साथ साथ आज जो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हैं लुई इनाचियो लूला डा सिल्वा, उन्होंने भी आज अपना अम्बेसडर जो है इसराइल से वापस बुला लिया है। तो काफी हलचल है गाजा के सिलसिले में यूरोप के अंदर और बाकी भी जो है साउथ अमेरिकन कंट्रीज एंड ऑल। AFP की ये रिपोर्ट है जी और ये भी इंतहाई खतरनाक रिपोर्ट है और इसके मुताबिक जो फिलेडेल्फी का एरिया या जिसको सलादीन कॉरिडोर कहते हैं, जो कि एक नैरो सा बफर जोन है इजिप्ट और गाजा के बीच में, उसके ऊपर आज इसराइल ने अपना कब्जा कर लिया है। हालांकि यहां पे बार्ब्ड वायर्स लगी हुई थी और ये 14 किलोमीटर का बॉर्डर है और 100 मीटर है विड्थ में, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर नीचे जो है टनल्स बनाए जाते हैं और इसके थ्रू स्मगलिंग की जाती है। ये जो था मिलिट्री ने बनाया था जब गाजा जो था वो डायरेक्टली अंडर इजरायली ऑक्यूपेशन आ गया था बिटवीन 1967 टू 2005। इसराइल कह रहा है जी कि हम इसको टारगेट अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको रोकना चाहते हैं इंकर्जन्स और स्मगलिंग को यहां पे। लेकिन इजिप्ट ने इसका आज बड़ा बुरा मनाया क्योंकि 2005 में इजिप्ट और इसराइल के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था और इस कॉरिडोर को बफर जोन बनाया गया था और उसमें इसराइल को कहा गया था कि वो सारी की सारी अपनी फोर्सेस जो हैं गाजा स्ट्रिप से विदड्रॉ करें। और कंट्रोल जो है वो पैलेस्टीनियंस को दे। तो लेकिन इसराइल जो है अब इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। और कल ही से हम आपको बता रहे हैं कि ये फिलाडेल्फी या कि सलादीन कॉरिडोर के बाहर ऑलरेडी इनके जो टैंक्स खड़े हुए हैं, जिसके के बारे में कल जो है व्हाइट हाउस में क्वेश्चन भी किया गया था जॉन किर्बी से कि भाई वो वहां पे क्या खड़े कर रहे हैं, रफा के ऊपर एक और अटैक करना चाहते हैं या क्या। तो जॉन किर्बी साहब ने कहा था कि नहीं, रफा पे अटैक नहीं है। तो अब उन्होंने सोचा कि जी अब रफा पे तो अटैक कर नहीं सकते हैं, तो चलो ठीक है दूसरा टारगेट ढूंढते हैं। तो अब ये सलादीन कॉरिडोर पे कब्जा इन्होंने कर लिया है कि यानी कि वो जो दो पैसे की शायद सहूलत थी गाजंस को, वैसे तो मुश्किल ही है कि शायद कोई पानी और रोटी पहुंच सकती थी, उसके ऊपर भी जी अब ये कब्जा करके बैठ गए हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो एक पीस कॉन्फ्रेंस जो थी है जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं अब, और ये जो पैलेस्टाइन और गाजा का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको खत्म करने के लिए आज अरब जो लीडर्स हैं बहुत सारे उनके साथ इन्होंने जो है वो मुलाकातें की हैं। ये एड्रेस कर रहे थे अरब लीडर्स को एट चाइना अरब स्टेट्स कोऑपरेशन फोरम इन बीजिंग, और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये गाजा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल इसमें जस्टिस जो है एब्सेंट है। चाइना जो है वो कंटिन्यू करेगा ह्यूमैनिटेरियन जो एड है वो देने के लिए गाजा को, और जिस वक्त ये लड़ाई खत्म होगी तो भी वहां पे रीबिल्डिंग जो एफर्ट्स है उनके अंदर शामिल होगा। आज शी साहब ने 69 मिलियन डॉलर्स की ह्यूमैनिटेरियन एड प्लेज की है गाजा के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि 3 मिलियन डॉलर्स जो है हम UNRWA जो कि वाहिद यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गाजा को हेल्प देती है उसमें भी ये पैसे डालेंगे। चाइना कहता है जी कि हम टू स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर जो है वो बिलीव करते हैं और हम चाहते हैं कि इमीडिएटली यहां पे सीज फायर होना चाहिए। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि पैलेस्टीनियन मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशंस जो है वो उसको भी हम चाहते हैं कि दी जाए, और ये तमाम की तमाम वो बातें हैं जो कि अरब नेशंस भी चाहती हैं। इससे पहले जो एक फर्स्ट मीटिंग भी इन्होंने करवाई थी हमास और फतह, ये जो दो पैलेस्टीनियन फैक्शंस हैं, अप्रैल के अंदर और उनके बीच में दोस्ती कराने की कोशिश की थी, और लास्ट ईयर इन्होंने एक डील ब्रोकर करवाई थी ईरान और सऊदी अरेबिया के अंदर, क्योंकि जाहिर है कि चाइना चाहता है कि अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस है उससे ये इलाका बाहर आए और अपना इन्फ्लुएंस यहां पर बढ़ाया जाए। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एंथनी ब्लिंकन साहब वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मोलदोवा के अंदर, और जो है वहां पे जो उनका कैपिटल है इनफैक्ट चिसेनियो, और उसके ऊपर वो इसराइल के ऊपर बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा जी कि ये इसराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है, और वो कहते हैं जी कि वी आर गोइंग टू प्लान फॉर द डे आफ्टर, तो वो डे आफ्टर कैसे आएगा अगर ये अपना ऑफेंसिव जो है कॉन्स्टेंटली ऐसे ही जारी रखेंगे। और उन्होंने कहा जी कि यूएस से जो है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को समझता है कि उसको सारे गाजा का कंट्रोल लेना चाहिए, और यही चीज जो है अरब एलाइज जो है वो भी चाहते हैं, लेकिन अगर हमास जो है कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रॉय करेगा जैसे कि वो कर रहा है अक्टूबर 7 के बाद से, तो वहां पर बहुत सारे वो कहता है जी मुझे इंक्रीमेंटल गेन्स होते हैं लेकिन वो गेन्स जो है वो ड्यूरेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज कल हमने देखे हैं वो बहुत ही हॉरिफिक थे जो कि वहां पर रफा के कैंप के ऊपर जो इनका अटैक किया गया था, क्योंकि वहां पर सिर्फ हमास वाले नहीं बल्कि वो बहुत क्लोजली सिविलियंस के साथ भी रह रहे हैं, तो सिविलियन जो डेथ्स हैं वो भी बहुत ज्यादा होती हैं। अब नतन्याहू साहब जो हैं वो कंप्लीटली उन्होंने ये इनिशिएटिव जो है इनका रिजेक्ट किया है, और उन्होंने कहा जी कि नहीं हम बिल्कुल हमास को इजाजत नहीं दे सकते कि वो यहां पर गाजा में वापस आए, और जो है उन्होंने कहा है जी कि हम जो है बिल्कुल इनको कंट्रोल देने को तैयार नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी पैलेस्टीनियंस का अपना एक स्टेट होना चाहिए, इस बात पे भी नतन्याहू साहब जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। यानी कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये सही मानों में ये चोरी और सीना जोरी का जो है ये एक बेहतरीन एक मिसाल है। बच्चों को अगर आपने बताना हो कि चोरी और सीना जोरी का क्या मतलब है, बोलो जी जैसे जो है वो इसराइल बैठा हुआ है पैलेस्टाइन में, दैट इज चोरी एंड सीना जोरी इसको है। यानी घर आपका और मैं उसके ऊपर कब्जा कर लूं और फिर आपको मारूं पीटूं भी, फिर आपको पहले तो जी दो कमरे दिए फिर दो बाथरूम दिए फिर मार पीट के एक कमरा और एक बाथरूम दिया फिर मार पीट के कहा नहीं बाथरूम में रहो अब कमरा भी नहीं मिलेगा, तो मतलब आप सोचें जरा कि क्या ड्रामेबाजी है। और सारी दुनिया जो है खासतौर पर हमारे अंकल सैम जो है वो कहते हैं जी हम अपने इलाके के साथ खड़े रहेंगे, और बाइडन साहब कहते हैं अभी तक मेरी रेड लाइन क्रॉस नहीं किया, यानी 36,000 बंदा इसराइल मार चुका है, तो अंकल जो जो है वो हमारे स्लीपी जो जी वो कह रहे हैं मेरा रेड लाइन इन्होंने पास नहीं अभी किया है। तो यानी जब तक रफा के अंदर एंटर होके वो जो दो चार बेचारा फलस्तीनी रह गया उसको भी मार के खत्म करके پورے فلسطین کو جو ہے وہ پورا طرح سے کلنز کر کے, ایتھنک کلنزنگ کر کے پھر ان کی ریڈ لائن کراس ہوئے گی اور پھر یہ بڑا افسوس کریں گے, اور پھر اس وقت پورے پیلسٹائن پہ پیلسٹائن کا نام ہی ختم کر کے اسرائیل اس کا نام رکھ دیں گے, پھر ان کو لگے گا کہ جی یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے اب, اور پھر ان کو جو ہے وہ پاکستان میں کوئی ایک کوئی کرسچن یا کوئی احمدی مارا جائے گا تو ان کو ہیومن رائٹس یاد آ جائیں گے سارے. تو 36,000 بندہ جو ہمارا ہے وہاں پہ ابھی تک ان کو ہیومن رائٹس نہیں یاد آئے. شیم آن دیم, شیم شیم آن دیم, شیم آن انکل سیم, ایبسولیوٹلی. اچھا جی, سویڈش گورنمنٹ جو ہے وہ جی ہن کہہ رہی ہے یوکرینینز نو پیان ڈرن دی کوئی گل نہیں, اور لڑو مرو ہیں, اور لڑو مرو, ہاں رشیا کے خلاف اور لڑو, لڑائی جاری رکھو, لڑائی روکنی نہیں ہے کسی صورت ہے جی. تو ایسے سویڈن نے کہا جی آج ہم 1.23 بلین ڈالرز جو ہیں وہ ڈونیٹ کریں گے, لڑائی جو کر رہا ہے یوکرین بڑا کمال کر رہا ہے رشیا کے خلاف جو لڑائی کر رہا ہے, اور ہم اس کو دیں گے. اور جو سویڈش ڈپٹی پرائم منسٹر ایبا بش جو ہیں انہوں نے آج اس کی ساری ڈیٹیلز دی تھی, اور سویڈش گورنمنٹ نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم جو اپنے جے اے ایس 39 گریبن جیٹس جو ہیں ان کو نہیں دیں گے بلکہ ہم فوکس کر رہے ہیں F-16s کو دینے کے لیے. تو یہ جو ڈونیشن دے رہے ہیں, آپ کو پتا ہی ہے کہ سویڈش جو پرائم منسٹر ان کی ملاقاتیں بھی زیلنسکی صاحب سے ہوئی تھی, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سارا یہ اسیس کیا تھا کہ ان کو کیا کیا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں جی ان کو ایئر ڈیفینس آرٹلری امیونیشن آرمرڈ ویکلز جو ہیں وہ چاہیے ہیں, تو اس کے اوپر فوکس رہے گا. دو سویڈش میڈ ساب اے ایس سی سی ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول پلین سسٹم بھی ان کو دیا جائے گا. ای یو کی جو ڈیفنس منسٹرز ہیں وہ برسلز کے اندر میٹنگ کر رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہی ہے کہ پریزیڈنٹ زیلنسکی صاحب دو دن سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور کافی ڈیلز جو ہیں وہ اسپین بیلجیم پورچوگال سے کر چکے ہیں. بیلجیم نے بھی کہا ہے کہ ہم 30 F-16 فائٹر جیٹس دیں گے, ڈچ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم پیٹریٹ ایئر ڈیفنس سسٹم دیں گے, چیک نے کہا ہے کہ جی ہم ایمونیشن دیں گے $7 بلین کا, لیکن جو ابھی ای یو ملٹری ایڈ ہے وہ ابھی تک اپروو نہیں ہو سکی ہے کیونکہ ایک ہنگیرین گورنمنٹ جو ہے جو پرائم منسٹر ہیں ہنگری کے وکٹر اوربن, انہوں نے ابھی تک اس کو اپروو نہیں کیا ہے. آپ کو پتا ہی ہے کہ وہ بڑے کلوز فرینڈ ہیں پوٹن صاحب کے ویسے بھی. تو یہ جناب جو ہیں ساری چیزیں ہیں, تو بس دبا دب ان کو اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے اور کہے بھی دیے جا رہے ہیں, تو لڑائیاں جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے جاری رہیں گی جب تک یہ ان کو اسلحہ ملتا رہے گا, نہ وہ بیٹھیں گے نہ وہ بیٹھیں گے پیچھے ہو کے. اچھا جی, دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی ڈاکٹر فیاض قریشی. بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, ہر طرح کی ان کے سے آپ نے سویدھائیں لینی ہیں سوائے سیڈیشن ڈینٹسٹری کے, ایسا نہ ہو آپ کو سیڈیٹ کر کے آبویسلی دام کر نہیں, ایسا نہیں ہے کچھ, اس از جسٹ اے کنسپریسی تھیوری. تو جناب ڈاکٹر مجیب کے پاس آپ نے ڈاکٹر فیاض قریشی کے پاس جانا ہے, بڑی زبردست قسم کی یہ جو ہے آپ کو ڈینٹسٹری کی سروسز دیتے ہیں اور آپ کو مشورہ بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ کہ کیا آپ کو یہ کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے. اسکاربرو میں ایک ان کا کلینک ہے اور اس کا نمبر ہے 4167579999, اور ایک مسز ساگا میں ہے, اس کا نمبر ہے 9052325678. ڈاکٹر فیاض قریشی اور جناب اور ڈیریوز لارجسٹ لال پاکستانی بفے ولیج ڈیز, ولیج ڈیز پہ جائیں, ان کے بھی دو ریسٹورانٹس ہیں, ایک مسز ساگا میں ہے, اس کا نمبر ہے 9052323663, اور دوسرا ہے اوکویل کے اندر اور وہاں کا نمبر ہے 9052262294. آپ جدھر بھی جانا چاہتے ہیں ان کو فون کر لیں, اپنا آرڈر ڈال لیں اور بیٹھ کے بھی کھائیں اور لا بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ جناب راجہ تھے بادشاہ جی آپ کو بالکل وہ کہتے ہیں جی رائٹ آٹو اور ہوم انشورنس میں آپ کو دیتا ہوں, آؤ سے ہی میرے کو ایک دفعہ تو ہیں, یو کین سیو $1,775 اور ایجکس میں ہوتے ہیں یہ آل اسٹیٹ کے ساتھ, ان کا نمبر ہے 6472903773. اور جو بھی آپ کو عامر بتا ہی رہے ہیں بڑی دیر سے کہ عامر شمسی جو ہے بڑا زبردست قسم کا اپنا جو ہے وہ حلال فوڈ فیسٹیول لے کر آ رہا ہے, اور آپ نے اگر کوئی سٹالز بھی بک کرانے ہیں تو بھی آپ اس پہ پارٹیسپیٹ کریں, اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ایونٹ تو بھی آپ جو ہے اٹینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو عامر شمسی تو آپ کے بڑے پیارے ہیں, ان کا نمبر آپ کے پاس ہوگا آپ سمپرک کر لیں.
نمبر شاید جی بتا دیتے ہیں 4166627861.
بالکل ٹھیک ہے, کور کر سکتے ہیں. اچھا جی, اچھا جناب پاکستان جو ہے اس کے اندر آج عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جو دو کیسز تھے May 9 کے رائٹ سے ریلیٹڈ, اس کے اندر ان کو راحت ملی ہے کیونکہ کورٹ نے کہا کہ ہم کو یہ گلٹی جو ہیں وہ نہیں نظر آئے اس کے اندر. جوڈیشل میجسٹریٹ عمر شبیر آف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ان اسلام آباد, انہوں نے اپنا ججمنٹ جو ہے وہ دیا جس کو کہ چیلنج کیا تھا انہوں نے عمران خان صاحب نے, اور یہ کیس جو تھا لکھا تھا شہزاد ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے اندر. तो मैजिस्ट्रेट ने इनकी जो प्ली थी वो अप्रूव की और उनको कहा जी कि आपको एक्विट किया जाता है। इससे पहले भी इनसफिशियंट जो एविडेंस थी उसके बिना पे जो दो पहले भी केसेस थे वेंडलिज्म के मई 9 से रिलेटेड, उसमें भी इनको एक्विट किया गया था ऑन मई 15, फिर भी इनको जेल में ही रखा हुआ है। उस वक्त जो ये ऑर्डर था इशू किया था जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहिब बिलाल ने, और ये भी जो दो केसेस थे इसको भी चैलेंज किया था इमरान खान साहब, और ये केसेस जो थे खन्ना पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद के अंदर लिखे गए थे। और अब जो इनके केसेस हैं लॉन्ग मार्च और वायलेटिंग आर्टिकल 144 के जो थे उनके ऊपर ये सुनवाई हो रही थी, और उसके ऊपर फिर आज जो है ये सामने सारे अब जो है वो वर्डिक्ट्स आए हैं। इमरान खान साहब जो है आज उनका फर्स्ट जो है कोर्ट रूम इंटरेक्शन हुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के साथ, और उन्होंने बड़ी कंप्लेंट्स की। उन्होंने कहा जी कि मुझे बिल्कुल जो है लीगल हेल्प नहीं मिल सक रही है, जेल अथॉरिटीज जो हैं वो मुझे लीगल टीम से मिलने नहीं देते हैं, मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, मुझे कोई मटीरियल नहीं देते, लाइब्रेरी नहीं मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें मैं केस कर सकता हूं। ये 5 मेंबर बेंच है जिसने के इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर रिज्यूम की थी आज हियरिंग, दिस वॉज मूव बाय द फेडरल गवर्नमेंट अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट September 15 मेजॉरिटी जजमेंट जिसको के स्ट्राइक डाउन किया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं टू एंटी ग्राफ्ट लॉज इसको जो है वो खत्म करें। ये जो बेंच था दिस वॉज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला, अमीनुद्दीन खान, जमाल मंदोखेल, हसन अख्तर रिजवी, और इनका जो डिसीजन था 4-1 रूलिंग आई थी नॉट टू स्ट्रीम प्रोसीडिंग्स लाइव, क्योंकि इनको बार बार कहा जा रहा था जी कि लाइव करें, लेकिन इन्होंने कहा जी कि लाइव करने से जो है वो जाहिर है कि हीट जनरेट होती है। लास्ट टाइम भी जो हियरिंग हुई थी खान साहब आए थे वीडियो लिंक के थ्रू, लेकिन उस वक्त इनको चांस नहीं मिला था बात करने का। अर्लियर दिस मंथ सुप्रीम कोर्ट जो थी उसने ऑर्डर दिया था फेडरल और पंजाब गवर्नमेंट को कि इनका अपीयरेंस जो है उसको फैसिलिटेट किया जाए थ्रू वीडियो लिंक इन द कोर्ट फ्रॉम अडियाला जेल। मई 14 की जो हियरिंग हुई थी वो तो वैसे लाइव ब्रॉडकास्ट की गई थी, लेकिन जो उससे पहले की थी वो नहीं थी, और आज भी उन्होंने कहा कि नहीं अब इसको इंटरनल मामलात रहने दें, क्योंकि फिर वो लोग जो है उनको देखते हैं इमरान खान को और फिर उनको गुस्सा आता है, और जाहिर है फिर वो जो उनके इमोशंस हैं वो जरा धचका खाते हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब का आज एक बहुत ही मेजर इंटरव्यू है वो सामने आया है, ये इन्होंने दिया है ZTO को, जो मेहदी हसन है जर्नलिस्ट बहुत फेमस उनको, और इससे पहले कि वो इंटरव्यू देते उसके ऊपर स्कैंडल्स बड़े आ गए। PMLN की जो MP हैं हिना परवेज भट्ट साहिबा, उन्होंने कहा जी कि जो मेहदी हसन साहब हैं उन्होंने पैसे लिए हैं इमरान खान का ये इंटरव्यू लेने के लिए और उसको पब्लिश करने के लिए, क्योंकि उस आर्टिकल के ऊपर लिखा हुआ था पेड आर्टिकल। तो मोहतरमा को फिर बाद में जो मेहदी हसन भी हंसता होगा कि किस तरह के ये लोग हैं पाकिस्तान में अनपढ़ जाहिल। बहरहाल जी मेहदी हसन को सामने आके क्लैरिफाई करना पड़ा, उसने कहा जी जो ये आर्टिकल के ऊपर पेड आर्टिकल लिखा हुआ है वो पेड सब्सक्रिप्शन यूजर्स के लिए है कि अगर आप पैसे देंगे तो मेरा आप ये आर्टिकल इमरान खान के साथ पढ़ सकेंगे, वरना आप नहीं पढ़ सकेंगे, कोई पैसे नहीं मुझे उसने इमरान खान ने। बहरहाल माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट होंगे। अच्छा जी ये जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें मेहदी हसन ने इनसे पूछा कि भाई आपकी जो टेन्योर था 3 साल का उसकी में आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी। उन्होंने कहा मेरी सबसे बड़ी गलती जनरल बाजवा के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करना था, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली जो है झूठ बोल रहे थे, एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे और जो है मेरे बारे में गलत अफवाहें जो हैं वो फैला रहे थे। ये इंटरव्यू जो है ये आमने सामने नहीं हो सका, मेहदी हसन साहब जो हैं वो आमने सामने का मांग रहे थे लेकिन जेल अथॉरिटीज ने इजाजत नहीं दी, तो उसने एक क्वेश्चनेयर लिख के भेजा था इमरान खान साहब को जिसके के ऊपर सारे फिर जवाब उन्होंने लिखे, लेकिन जब मेहदी हसन ने कहा कि इसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन हैं तो काउंटर क्वेश्चन फिर उसको नहीं करने दिए गए, उसको कहा जो तुम्हें मिल गया बस इसी के ऊपर जो है आप अफाका करें, अब आप जो है इस पर आप खुशी करें। इन्होंने कहा जी कि इनसे जब पूछा गया कि आपकी इम्प्रेस के अंदर किसका हाथ है तो इमरान खान साहब ने कहा मुझे 1% भी शक नहीं है कि मेरा ये जो सारे का सारा इम्प्रिजनमेंट, ये सारी जो ऑर्डील है इसको ऑर्केस्ट्रेट किया है जनरल बाजवा ने और वो ही रिस्पॉन्सिबल है, बड़ा मेथोडिकली उन्होंने प्लान किया और एग्जीक्यूट किया है ये प्लान और उसके अंदर झूठ बोला है, ये सारी स्कीम जो बनाई थी और उसमें बहुत सारी जो नेशनल और इंटरनेशनल केओस जो है इन्होंने पैदा करने की कोशिश की है। 2019 में खान साहब जो है उन्होंने खुद ही इनकी एक्सटेंशन जो है वो 3 साल के लिए अप्रूव की थी बाजवा साहब की। अभी हालांकि सिर्फ 3 महीने रह गए थे उनके रिटायर होने में, तो इसी सिलसिले का वो क्वेश्चन जो था मेहदी हसन कर रहे थे इनसे। 2022 के भी एक इंटरव्यू में उन्होंने इसी तरह की बातें की थी कि बाजवा साहब जो है वो समझ नहीं सके कि वो डेमोक्रेसी को और पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने इन एक्शन की वजह से, तो ये बात इन्होंने यहां पर भी दोहराई। इनसे जब पूछा गया कि जी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी का आप समझते हैं कि उन्होंने आपको रिमूव किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल लगता है कि जनरल बाजवा ने सिंगल हैंडेडली झूठ मेरे बारे में फैला के और वो झूठ जो है यूएसए जैसे कंट्रीज को भी बताया कि मैं बड़ा एंटी अमेरिकन हूं, मैं उनके खिलाफ हूं, मैं उनके इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखूंगा और मेरे जो टाइज हैं ना सिर्फ अमेरिका बल्कि और लोगों के साथ भी किए खराब सिर्फ अपने पर्सनल ग्रीड के लिए कि वो जो है अपनी जो है दुकान चमका सकता। और उन्होंने कहा जी कि मैंने जब से पॉलिटिक्स की है मैं हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए मैंने बात की है, अगर यहां पे जो है वो जस्टिस लोगों को दी जाती इक्वली तो फिर मेरे जैसे बंदे को पॉलिटिक्स में आने की कोई जरूरत नहीं थी। इनसे एक सवाल किया गया कि आपके ताल्लुकात जो है आपके टेन्योर में आपने सबसे खराब कर लिए सऊदी अरेबिया से भी दूसरे अरब कंट्री से भी। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे तो अभी गवर्नमेंट जाने के बाद भी सबके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और जो है मैं तो किसी के अगेंस्ट भी नहीं हूं, ना तो जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तानी जनरल्स और पॉलिटिशियंस, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मेरी किसी के साथ लड़ाई नहीं है, खासतौर पे सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज के साथ बिल्कुल भी नहीं है। और वो कहते हैं उन्होंने कहा जी कि बाजवा ने ये जो पॉइजन फैलाया है ये बस अभी के लिए तो सारे लोग उसको बाय कर रहे हैं लेकिन ये लास्ट नहीं करेगा। और उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर एक जो स्टेबलाइजिंग फोर्स है वो सिर्फ मिलिट्री की होती है और जब मिलिट्री का चीफ कोई झूठा नैरेटिव बयान करेगा तो फिर लोग जो हैं मेरे हक में कैसे बोलेंगे, उनको लगेगा कि अगर ये मिलिट्री वाला ऐसे इनका जनरल बोल रहा है तो इसका मतलब है इसमें कुछ तो सच होगा, लेकिन ये सच नहीं है। इसीलिए मैं दुनिया को कहता हूं कि डेमोक्रेसी जो है इस मुल्क में और जो 250 मिलियन पाकिस्तानीज हैं उनके लिए आवाज आप उठाएं जो उनके साथ किया जा रहा है और जिस तरह से ये ब्रॉड डे लाइट में इलेक्शंस को चोरी किया गया है फरवरी 8 के। तो ये आज बड़ा इंटरेस्टिंग जी इनका इंटरव्यू था और माशाल्लाह से हिना परवेज भट्ट ने इसको रोलर कोस्टर जो में डाल के बर फेंकने की कोशिश की लेकिन फेंका नहीं जा सका। अच्छा जनाब, एक उस्ताद है, यानी कि आप सोचें कि उस्ताद का क्या रोल होता है, उस्ताद का काम है तालीम देना, लेकिन वो दरसगाह वो तालीम का प्लेस जहां पे कि तालीम दी जा रही है उसके लिए अगर एक उस्ताद बोले कि इसको जला दो तो कैसा है। बहरहाल जी ऐसा ही हुआ है, एक केपी का जो नॉर्थ वजीरिस्तान का एक इलाका है वहां पे जो एक गर्ल्स स्कूल है उसको जलाने के लिए एक टीचर ने जो है वो बोला। ये गोल्डन एरो गर्ल्स मिडिल स्कूल था शखिकमर विलेज के अंदर रजमक तहसील के अंदर और एक पुलिस ने सस्पेक्ट किया है कि ये टीचर इन्वॉल्व था जिसने लोगों को कहा कि मई 25 को इसको आग लगा दी जाए। 4 मास्क आर्म्ड मैन जो थे वो स्कूल के अंदर आए थे और उन्होंने क्लासें जलानी शुरू कर दी थी, स्टूडेंट्स को हैरेस किया था, फर्नीचर सीलिंग कंप्यूटर्स बुक्स अदर इक्विपमेंट सबको जला के राख कर दिया। इस स्कूल के अंदर 400 के करीब बच्चियां जो हैं वो पढ़ती थी। लोकल जो लोग हैं उन्होंने बड़ा ही इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया है और फेडरल गवर्नमेंट को कहा कि फौरन यहां पे एजुकेशन की एक्टिविटीज जो रिस्टोर की जाए और इस स्कूल को जो है फिर से रनिंग कंडीशन में किया जाए। एनर्जी मिनिस्टर जो है अवैस लगारी उन्होंने आज कहा है कि पावर आउटरेज जो है वो कंटिन्यू रहेगी जो लॉस मेकिंग फीडर्स हैं उनके ऊपर पाकिस्तान में। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस्लामाबाद के अंदर और उन्होंने कहा जी कि ये जो डायरेक्ट जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं डिस्कोस जिनको बोलते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, मिनिमम लोड शेडिंग की तरफ हम जा रहे हैं और मैंने इनको कहा है कि मुझे रोजाना की बेसिस पे आप डिटेल्स देंगे डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, क्योंकि आपको पता ही है कि बेताशा गर्मी भी हो रही है पाकिस्तान में और लोड शेडिंग भी अब लंबी से लंबी होती जा रही है। तो उस सिलसिले में बात कर रहे थे क्योंकि लोग हैरान हो रहे थे कि अगर सोलर एनर्जी की तरफ भी जाया जा रहा है और जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए हैं तो फिर ये लोड शेडिंग क्यों अब हो रही है, वरना होनी नहीं चाहिए। तो अवैस लगारी ने आज इसके ऊपर कहा है कि ये जो हाई लॉस फीडर्स हैं और टेक्निकल फॉल्ट्स हैं और ये जो खासतौर पे बिजली की चोरी की जाती है उसकी वजह से जो है ये बहुत मुश्किल आती है, लेकिन हम अब सिस्टम को रीवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त शॉर्टफॉल जो है 4,232 मेगावाट है कंट्री के अंदर और 150 लॉस मेकिंग फीडर्स जो हैं पंजाब में है, 700 सिंध में है, 350 केपी 80 बलूचिस्तान के अंदर हैं और इनको ओवरऑल करने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बड़ी कैपेसिटी है कि ये बेतहाशा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर सकते हैं और मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा कि हम आपकी डिमांड जो है समर की पूरी करेंगे और आने वाले सालों में भी पूरी करेंगे। तो पाइजान अगर कैपेसिटी है तो फिर उस कैपेसिटी को जरा थोड़ा तेज कर दें आप। कैपेसिटी तो अल्लाह का शुक्र है इस मुल्क में हर चीज की है, लेकिन अब उस पर काम नहीं कर रहे तो क्या कर सकते हैं। ISPR की आज एक जनाब प्रेस रिलीज आई है और इसके मुताबिक जो बहुत सारे कॉर्प कमांडर्स जो थे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, वो आज जनरल हेडक्वार्टर्स में जमा हुए थे। इनकी 83rd फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर उन्होंने क्या कहा कि जी जो May 9 में जो राइट्स हुए हैं उसके जो लोग उसमें शामिल थे उनको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। ये लोग जो हैं ये डिजिटल टेररिज्म के अंदर जो है इन्वॉल्व हैं और इनको जो है ये फॉरेन इनके जो कोहर्ट्स हैं वो इनके जो है फाइनेंसिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से ये नेशनल और स्टेट इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क के अंदर होपलेसनेस फैला रहे हैं, लेकिन हम ऐसा करने नहीं देंगे इनको। और जो कौमी अदारे हैं उनके बीच और लोगों के बीच में लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज है और लोगों को इसके बारे में पता है और मिलिट्री जो है ऐसा नहीं करने देगी। अच्छा जी, तुसी कौन हो भाई, तुसी अपने कार बैठो भाईजान। बहरहाल जी, इन्होंने ये कहा। और जनाब आज बहुत दिनों के बाद हिंदुस्तान के जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, माशाल्लाह 92 इयर्स उनकी एज है लेकिन बड़े ठीक लगते हैं अभी भी, उन्होंने आज जनाब मोदी जी के ऊपर जो है बेतहाशा क्रिटिसिज्म किया। बस सारा वक्त से वो खामोश बैठे हुए थे लेकिन उन्होंने कहा जी कि जिस तरह की विशियस हेट स्पीचेस मोदी जी ने जो है वो की हैं और जिस तरह से पंजाब के लोगों के अगेंस्ट वो बोले हैं, इससे ज्यादा कभी कोई प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का ज्यादा नीचे नहीं गिरा जितने ये गिर गए हैं और जितना पीएमओ का स्टैंडर्ड इन्होंने जो है वो गिरा दिया है। मनमोहन सिंह ने कहा जी कि मोदी जी जब पहली दफा आए थे तो हमें लग रहा था कि ये डिग्निफाइड तरीके से चलेंगे, लेकिन ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया की हिस्ट्री में जिन्होंने के जो है इतना लो लेवल जो है अब क्रिएट कर दिया है, एक हेटफुल अनपार्लियामेंट्री कोर्स जो लैंग्वेज है वो ये यूज करते हैं और एक स्पेशल सेगमेंट को और ऑपोजिशन जो है उसको कॉन्स्टेंटली ये टारगेट करते हैं। उन्होंने कहा जी कि ये इंतहाई झूठी स्टेटमेंट्स मेरे बारे में भी फैला रहे हैं कि मैं भी जो था एक कम्युनिटी को सिंगल आउट करता था, मेरी पूरी की पूरी लाइफ में एक भी कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें मैंने किसी एक कम्युनिटी को अलहदा करके उसके खिलाफ हेट स्पीच करने की कोशिश की। हेट स्पीचेस देने का जो सोल कॉपीराइट है वो सिर्फ बीजेपी के पास है। और उन्होंने कहा जी कि अब आपके पास जो है ये जो फाइनल फेज में अब शुरू हो गया इंडिया का इलेक्शन, आपके पास चांस है कि आप डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को इस मुल्क में बचा सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही डेस्पोटिक रजीम थी जो कि बीजेपी वाले चला रहे थे एंड दे हैड अनलीश्ड डिक्टेटरशिप इन इंडिया। बहुत सख्त आज लफ्ज यूज किए हैं मनमोहन सिंह साहब ने, उन्होंने कहा ये तो डिक्टेटरशिप इन्होंने चलाई हुई थी इस मुल्क के अंदर, डेस्पोटिक रजीम ये चला रहे थे और कोई इन्होंने जो है हरबा छोड़ा नहीं है। वो कहते हैं जी दे टर्न नो स्टोन अनटर्न्ड इन कैस्टिगेटिंग के मतलब है बुरा नाम दें पंजाबी पंजाबीज एंड पंजाब एंड पंजाबियत, इसको बुरा नाम देने के लिए पिछले 10 साल में उन्होंने वो कहते हैं ना एड़ी चोटी का जोर लगाया है। इसके अलावा उन्होंने मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि 750 फार्मर्स जो कि मोस्टली पंजाब से थे वो उस वक्त मर गए जब वो दिल्ली के बॉर्डर पे सिर्फ अपनी मांगे जो है वो मांगने के लिए बैठे हुए थे, एज इफ उन्होंने कहा लाठीज एंड रबर बुलेट्स वर नॉट इनफ के जो मोदी जी जो है उन्होंने उनको जो है बुरे नाम भी देने शुरू कर दिए जैसे कि जी ये तो एजिटेटर्स हैं और ये तो पैरासाइट्स हैं जो आए हुए हैं पंजाब से। इसके अलावा उन्होंने मोदी जी की जो अग्निपथ स्कीम है सोल्जर्स के अगेंस्ट उसको बड़ा ही डेंजरस कहा फॉर नेशनल सिक्योरिटी और अग्निवीर स्कीम जो है उसको इन्होंने इल कंसीव किया। उन्होंने कहा जी कि इससे आप पता चला सकते हैं कि कितना इनके अंदर फेक नेशनलिज्म है। उन्होंने कंपेयर किया फिर यूपीए की गवर्नमेंट को एनडीए की गवर्नमेंट के साथ और उन्होंने कहा जी कि ये जो इनकी गवर्नमेंट है उसमें इकोनॉमी का बेतहाशा बुरा हाल है, चाहे डीमोनेटाइजेशन थी, चाहे फ्लॉड जीएसटी था, चाहे कि इनकी मिसमैनेजमेंट थी पेंडेमिक के बीच में, जीडीपी ग्रोथ जो है 6% से भी नीचे है और ये झूठ बोल रहे हैं कि ये ऊपर 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 जा रही है। तो एनडीए की आप जो है ये देख लें, वो कहते हैं जी कि जिस वक्त यूपीए का टेन्योर था यानी कि इनका टेन्योर था कांग्रेस वालों का उस वक्त इंडिया की ग्रोथ 8% थी, इस वक्त बेतहाशा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेतहाशा इन्फ्लेशन है और ये अमीर और गरीब का जो इनइक्वालिटी का गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है एंड विच इज 100-year हाई नाउ इन इंडिया। और उन्होंने कहा जी कि मैं बस हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूं कि आप सब लोग लव पीस फ्रेटर्निटी और हार्मनी से इस हिंदुस्तान के अंदर रहें और पंजाब की प्रोग्रेस के लिए काम करें। ते जनाब आज बड़ा इन्होंने लताड़िया। और जनाब एक सर्वे आया है प्रजाता प्रजाता अंतरा की तरफ से फाउंडेशन जो है ये एक हिंदुस्तान की इसने किया है और इसमें इन्होंने फाइंड आउट किया है कि 1 in 4 बीजेपी एंड कांग्रेस कैंडिडेट जो कि कंटेस्ट कर रहे हैं अभी 2024 का लोकसभा का इलेक्शन, ये फैमिली लेगेसी जो है यानी कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है ये आगे लेके चल रहे हैं। ये जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, इन्होंने तकरीबन 768 कैंडिडेट्स जो हैं वो फील्ड किए हैं जिसमें के 209 जो है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को आगे लेके चल रहे हैं और इनमें से बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो कि सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियंस हैं। बीजेपी जो है जो अक्सर अपने राइवल्स को बड़ा क्रिटिसाइज करती है कि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चला रहे हैं, 442 कैंडिडेट्स जो इन्होंने फील्ड किए हैं उसके अंदर से 110 यानी कि 24.88% जो हैं वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ हैं यानी कि पॉलिटिकल लेगेसी वो जो है अपनी चला रहे हैं। 69 इसमें से जो है सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियंस हैं। ये रेशियो कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए 30.36 है। जो 326 कैंडिडेट्स इन्होंने फील्ड किए हैं उसमें से 99 की पॉलिटिकल लेगेसी है और हैरत की बात तो यह है कि राहुल गांधी जी तो अब फोर्थ जनरेशन जो है पॉलिटिशियन है हिंदुस्तान में। इसके ऊपर बात करते हुए प्रजाता अंतरा फाउंडेशन जो है उसने कहा कि चूंकि बहुत अरसे से हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ फ्यू हैंड्स के अंदर है तो इसलिए इसने जो है बहुत ज्यादा मीडियोकर कर दिया है पॉलिटिकल फील्ड को, मीडियोक्रेसी के ऊपर अब ये स्टैंड करती है क्योंकि नॉन डायनेस्टिक बैकग्राउंड्स के जो लोग हैं चाहे जितने मर्जी भी क्वालिफाइड क्यों ना होए उनको ओवरलुक किया जाता है और उनको सामने नहीं लाया जाता। भाई जाने तो पाकिस्तान वाली स्टोरी चल रही है, ये कट पेस्ट कर रहे हैं इंडिया वाले, नकल मार रहे हैं हमारी है, क्या बात है नकल
कितने सालों पहले से।
हाँ देखो जरा ये अब कर रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है, पैन क्या हो गया आपको है। अच्छा जनाब मनोज बाजपेयी साहब जो है उनका एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें कि उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि बॉलीवुड के अंदर बेतहाशा सब्सटेंस अब्यूज है और बड़ी डिवोर्सेज हैं, उसके ऊपर तो बाजपेयी साहब भड़क गए। वो कहते हैं जी मैं, मेरे दोस्त, मेरे को स्टार्स कोई भी इन चीजों के अंदर शामिल नहीं है, 95% जो है बड़े पैशनेट और सिंसियर लोग हैं, फिल्मों के साथ काम करना चाहते हैं, इसी तरह पैशनेट और सिंसियर अपनी फैमिलियों के साथ भी हैं, इंडस्ट्री के साथ भी हैं, लेकिन इंडस्ट्री जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप 30,000 कोर्ट के अंदर जाएं तो वहां पे बेतहाशा डिवोर्सेज के केसेस की लाइन लगी हुई है तो आप रियलाइज करते हैं कि अब ये मैरिज जैसे बंधन जो है उसमें ज्यादा लोग बंधे नहीं रहना चाहते। हमने इस मुल्क में बढ़ावा दिया न्यूक्लियर फैमिलीज को, उसके बेनिफिट्स भी थे लेकिन अब उसके नुकसान भी नजर हमें आ रहे हैं। अगर आप बाकी सोसाइटी को इंडस्ट्री के साथ देखें यानी कि बॉलीवुड के साथ देखें तो आपको पता चलेगा कि बॉलीवुड के अंदर बहुत कम डिवोर्सेज हैं, यहां पे बड़े ओपन माइंडेड लोग हैं और बड़े जो कि बड़ी अच्छी चीज है क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए ओपन माइंड आपको चाहिए, तो बहुत ही कम सब्सटेंस अब्यूज भी है और बहुत ही कम डिवोर्सेज भी हैं, ये कहना था मनोज बाजपेयी साहब का। और जनाब सलमान खान साहब के ऊपर आखिर आ ही गई एक और कंट्रोवर्सी। उन्होंने कहा जी कि बड़ा सलमान खान कहता है ऑन स्क्रीन किसिंग मुझे नहीं करनी, लेकिन किया तो इन्होंने था, लेकिन वो नादानों को पता नहीं चला कि वो एंगल कुछ गलत था। इन्होंने हमेशा से कहा कि मैं ऑन स्क्रीन, हालांकि इनकी जब जो फिल्में भी होती हैं जो अपनी एक्ट्रेसेस के साथ भी काम कर रहे होते हैं कभी अपने इंटीमेट सीन्स जो हैं ये रिवील नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि 1996 की एक फिल्म जिसमें कि करिश्मा कपूर थी इनके साथ वो जो भी सामने आई है उसमें शायद इन्होंने अपनी किसिंग पॉलिसी जो है ऑन स्क्रीन वो शायद चेंज की थी, लेकिन लग ये रहा है कि वो जो है करिश्मा कपूर उसकी अगर आप गर्दन देखें और उसका स्मूह देखें तो वो सीधा नहीं है, उसने टर्न किया हुआ है और सलमान खान उसके चीक्स या उसके चिन के ऊपर आप कह सकते हैं उसको किस दे रहा है, तो इसलिए सलमान सल्लू भाई अपनी पॉलिसी के ऊपर कायम और दायम है। ठीक है जी ऐसे। और जनाब लोग बड़े जो हैं वो अगर आप ट्विटर पे ट्रेंड देखें कल से तो बड़ी दुनिया पागल हुई हुई है क्योंकि ब्रैड पिट और जॉर्ज क्लूनी फिर से जो हैं आ रहे हैं जॉन वॉट्स की जो अपकमिंग एक्शन कॉमेडी है वुल्फ्स, उसके अंदर 16 साल के बाद ये दोनों फिर से नजर आएंगे। इसका ट्रेलर जो था कल लॉन्च किया गया था 2 minutes and 43 seconds का जिसमें के देखा जा रहा है कि ये जो दो लोन वुल्फ्स हैं ये फिक्सर्स हैं और ये एक जो किलर है उसकी तलाश में है। एक औरत देखी जा रही है जो कि कॉल करती है एक फिक्सर के लिए, एक मर्डर जो हो जाता है इलाके में और उसके बाद गलती से दो लोग वहां पे उस पे जगह पे भेजे जाते हैं और वो दो लोग जॉर्ज क्लूनी और ब्रैड पिट है। अब ये दोनों तो इनकी तो आदत है ये दोनों अकेले काम करते हैं, आई मीन अकॉर्डिंग टू द ट्रेलर, तो इनके बीच में बड़ी वो लड़ाई झगड़ा होता है फिर इनको लगता है कि कोई चॉइस नहीं है तो चलो मिलकर काम करते हैं, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म होने वाली है। लोगों ने इसके ऊपर कहा कि ओशंस फ्रेंचाइज मीट्स बुलेट ट्रेन. वी आर वेटिंग फॉर दिस स्टनिंग मूवी. और ब्रैड पिट और जॉर्ज क्लूनी प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म को अंडर प्लान बी प्रोडक्शंस एंड स्मोक हाउस पिक्चर बैनर्स. एप्पल जो है वो भी इस प्रोडक्शन के अंदर शामिल है. सोनी पिक्चर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगी. तो लोग जो है बड़े एक्साइटेड हैं. और जनाब जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है June 9 को, उसके अंदर बड़े टेररिज्म के जो हैं वो थ्रेट्स आ गए हैं. टेररिस्ट ग्रुप जो है उसने बड़ा थ्रेटन किया है न्यूयॉर्क सिटी को. और आपको पता ही है कि इंडिया न्यूयॉर्क में 4 और पाकिस्तान 2 मैचेस खेलेगा. न्यूयॉर्क के जो गवर्नर हैं कैथी होचुल, उन्होंने कहा कि नो वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इट, वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन. और मैचेस जो है वो तो वैसे स्टार्ट हो रहे हैं जून 1 से. और जो है वो कह रहे हैं कि लोकल जो रेजिडेंट्स जो विजिटर्स हैं उनके ऊपर हम नसू, ये जो काउंटी है उसके अंदर बहुत ज्यादा हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी और फेडरल लॉ एनफोर्समेंट की. अब आपको काफी यहां पे जो है नफरी नजर आएगी. पाकिस्तान के टेस्ट कोच जो हैं जेसन गिल्स भी, उन्होंने आज एडवाइस किया है T20 नेशनल टीम को कि बिल्कुल अग्रेसिव होके T20 वर्ल्ड कप में USA में और वेस्ट इंडीज में खेलो. बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज, आपके पास बेतहाशा टैलेंट है और आपकी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं और आपको डरने की कुछ जरूरत नहीं है. PCB ने अपॉइंट किया था फॉर्मर साउथ अफ्रीकन टॉप ऑर्डर बैटर गैरी क्रिस्टन और फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जेसन गिल्सबी को लास्ट मंथ एज हेड कोचेज और पाकिस्तान व्हाइट एंड रेड बॉल्स. और ये अब अपना रोल टेकअप करेंगे फॉर टेस्ट चैंपियनशिप फिक्स्चर्स बांग्लादेश में जो के खिलाफ जो होंगे पाकिस्तान में अगस्त में, और टेस्ट जो होएगा पाकिस्तान में इंग्लैंड के खिलाफ अक्टूबर में, और फिर साउथ अफ्रीका की जो होगी अवे सीरीज होएगी इन December 2024-25. तो उन्होंने कहा जी कि T20 के अंदर बहुत सारे की मोमेंट्स आते हैं और पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो वो उन की मोमेंट्स को पकड़ सकते हैं. बैटिंग के अंदर भी आपको वो की मोमेंट पकड़ना पड़ेगा और बॉलिंग में भी. और एक आपने अच्छा ओवर कर लिया इन बैटिंग या के बॉलिंग तो बस फिर आपकी जो है किश्ती निकल पड़ती है, होल गेम जो है वो चेंज हो जाती है. तो उन्होंने कहा जी कि मुझे पाकिस्तान की टीम बड़ी अच्छी लग रही है, उन्होंने बड़ी अच्छी प्रिपरेशन और प्लानिंग की है और मैं बड़ा एक्साइटेड हूं बाबर एंड को देखने के लिए इसके अंदर. ऑलराउंडर शादाब खान साहब जो हैं, ही हैज बिकम द फोर्थ पाकिस्तानी क्रिकेटर टू प्ले 100 T20 मैचेस इन फोर्थ T20 अगेंस्ट इंग्लैंड एट ओवल टुडे. और ही हैज एंटर्ड द एलीट लिस्ट ऑफ पाक प्लेयर्स शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, बाबर आजम. मलिक जो है वो अपियर हुए थे 123 गेम्स में, बाबर और हफीज 119 गेम्स के अंदर. इससे पहले जो है शादाब ने 107 विकेट्स ली थी और ये भी जो है एक रिकॉर्ड है विच इज मोस्ट बाय पाक बॉलर इन T20. इन 48 इनिंग्स इसने स्कोर भी किया है 625 रन. इसके अलावा बाबर आजम जो है ही हैज बिकम द सेकेंड बैटर टू स्कोर 4000 T20 रन. इसी के अंदर ये जो मैच इंग्लैंड के खिलाफ हो रहा था फोर्थ T20 एट द ओवल. और ये इससे पहले जो है जो थी फीट जो थी वो विराट कोहली के पास थी. ही हैज मेड 4037 रन इन T20. इंग्लैंड का जो है जो आज का मैच था पाकिस्तान के साथ वो चौथा T20 वो भी उसने 7 विकेट से जीता है. पाकिस्तान ने बनाए थे 157 और इंग्लैंड ने बनाए थे 158 फॉर 3. तो बहरहाल कुछ अच्छी खबरें, कुछ बस वही खटी मिठी हमारी खबरें. और जनाब पाकिस्तान की एक और बहुत बड़ी खबर, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई है खेलने के लिए यहां पे वॉलीबॉल पाकिस्तान से, लियाकत जिमनेजियम पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में, उसको फिर से आज पाकिस्तान ने 3-0 से हराया. और जो है ये सरसब्ज वॉलीबॉल सीरीज जो हो रही है उसमें ये दूसरा मैच भी इन्होंने जीता. इससे पहले ओपनर भी जीता था. पाकिस्तान ने पहला सेट जीता 26-24 से, सेकेंड 25-19 से. और अब जब तीसरे मैच की जो कि अभी जरा देर से था उसकी कोई डिटेल्स आएंगी तो कल हम आपको दे सकते हैं. एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज, अगेन गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान अनवेल करने जा रहा है पाकिस्तान फुटबॉल लीग ऑन June 4 और इसके लिए उन्होंने इनवाइट किया है स्पेनिश जायंट्स क्लब जो है एल्टिको डी मैड्रिड को टू अटेंड द लॉन्च. एल्टिको डी मैड्रिड जो था उसने पाकिस्तान को विजिट किया था बिटवीन 2016 एंड 2020 जब ये पहली दफा इंटरनेशनल एकेडमी लाहौर में बनाई गई थी और इसको जो था इन्होंने एक्सपेंशन का जो था वो कहा था कि हम इंटरनेशनली अब एक्सपैंड कर रहे हैं. एल्टिको जो है उसकी एकेडमी के जो उनके जो मैनेजर हैं और डॉल्फो गुरेरो गंथर, उन्होंने कहा जी कि हम बड़े थ्रिल्ड हैं कि एकेडमी ने हमको इनवाइट किया एंड वी आर थ्रिल्ड टू बी बैक इन, वी आर एक्साइटेड टू बी बैक इन पाकिस्तान. पाकिस्तान एक ह्यूज मार्केट है, वहां पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं हैं क्योंकि बेतहाशा पाकिस्तान में टैलेंट है, तो हम ये अपना जो फुटबॉल का टैलेंट है एकेडमी प्रोग्राम्स के थ्रू डेवलप करना चाहते हैं। इन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान अब टूर कर रहे हैं बिटवीन June 3 to 5, और सबसे पहले तो ये जाएंगे इस्लामाबाद और फिर अपना टूर जो है वो एंड करेंगे कराची में। इसके साथ साथ जब कराची में होंगे तो जनाब क्या बात है, क्या बात है हमारे बच्चों की, कराची में जब ये होंगे तो दे विल विजिट ककड़ी फुटबॉल स्टेडियम इन लियारी। तो लियारी भी जनाब ये जो है जाएंगे और वहां पे बस वही है हमारे जो गली बॉयज है ना, गली बॉयज में भी बड़ा टैलेंट है, ये गली बॉयज जो है स्काउट करेंगे। तो ये जनाब हमारी खबरें आज की
हो गई, खबरें
बस ये और सुननी है, तुझे और सुननी है, निकल जाओ बस घर में सीधा ना किसी पे जाना, इधर उधर ना देखना।
ये थी गर्मा गर्म खबरें आज की,
गर्मा गर्म।
और शाजी बहुत शुक्रिया आपका,
इंशाल्लाह
जिंदगी रही तो आपसे कल फिर
इंशाल्लाह, अगर मैं बीमार ना, क्योंकि कल
नहीं होता है, आई विल टेक केयर, आई विल टेक केयर, आई विल टेक केयर।
नहीं मुझे कुछ जुकाम का असर है,
मैं उस पर बात करता हूँ आपसे।
ठीक है ठीक,
चलिए जनाब बहुत शुक्रिया,
ओके थैंक यू आमिर, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह।
बहुत शुक्रिया तमाम सामईन का भी हमारे साथ बहुत शुक्रिया जुड़ने का। अब आपको पता है कि 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक जो है वो भूली बिसरी यादें जो हैं जिसे लियाकत मलिक साहब जो हैं वो आपके लिए पेश करते हैं। तो अब मुझे भी आज इजाजत दीजिए, आई होप को आप लोगों का सफर मेरे साथ अच्छा गुजरा होगा, इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही तो कल फिर आपके साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, भूली बिसरी यादें लियाकत मलिक के साथ।
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM।